एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करेंगे जो शायद हमारे डिजिटल जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये किताब है शोशना जुबाफ की द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। नाम थोड़ा शायद भारी लगे, पर इसका ताल्लुक हमारी रोज की ऑनलाइन जिंदगी से है।
हाँ बिल्कुल, और ये विषय आजकल समझना मतलब बहुत ही जरूरी हो गया है।
बिल्कुल।
हम सब स्मार्टफोन, ऐप्स, सोशल मीडिया, इनसे घिरे हुए हैं। दिन भर कितनी सारी मुफ्त सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, है ना?
सही कहा।
लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि भाई अगर ये सब मुफ्त है तो ये कंपनियां खरबों डॉलर कमा कैसे रही हैं? तो ये किताब इसी पहेली को खोलती है परत दर परत।
ये दिखाती है कि कैसे अनजाने में ही हमारा ऑनलाइन व्यवहार, हमारी पसंद नापसंद, यहां तक कि हमारी भावनाएं भी, वो सब एक बिल्कुल नए किस्म के बाजार का, आप कह सकते हैं, कच्चा माल बन गई हैं।
बिल्कुल, और ये सिर्फ प्राइवेसी का मुद्दा नहीं है जैसा आपने कहा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी आजादी, हमारे फैसले लेने की क्षमता, इन सब चीजों से जुड़ा है।
तो चलिए आज इस जरूरी किताब की दुनिया में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शोशना जुबाफ हमें क्या बता रही हैं।
जरूर।
पहले बात करते हैं लेखिका की। शोशना जुबाफ ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर अमेरिटा हैं, मतलब एक बहुत ही सम्मानित और अनुभवी अकादमिक, और वो दशकों से, मतलब कई सालों से, तकनीक, समाज और पूंजीवाद के बदलते रिश्तों पर लिख रही हैं और रिसर्च कर रही हैं।
हाँ, और उनकी सबसे खास बात है, मुझे लगता है, उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने इन मुद्दों पर तब सोचना शुरू कर दिया था जब ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते भी नहीं थे। उनकी एक किताब थी 1988 में, इन द एज ऑफ द स्मार्ट मशीन।
अच्छा, 1988 में।
हाँ, इंटरनेट के आम होने से भी पहले, और उसमें उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर आने से काम करने के तरीके, पावर इक्वेशंस, ये सब कैसे बदलेंगे। कमाल की बात है।
वाकई, तो वो सिर्फ टेक एक्सपर्ट नहीं है, उनको बिजनेस, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब की गहरी समझ है।
एग्जैक्टली, और इसीलिए वो आज के डिजिटल बदलावों को सिर्फ एक मतलब तकनीकी प्रॉब्लम जैसे नहीं देखती कि बस प्राइवेसी लीक हो गई। नहीं,
तो फिर कैसे देखती हैं?
वो इसे एक पूरी नई आर्थिक व्यवस्था के तौर पे देखती हैं, एक नया इकोनॉमिक लॉजिक जिसके अपने नियम हैं, अपनी जरूरतें हैं और समाज पर उसके अपने असर हो रहे हैं। उनकी यही जो मिलीजुली समझ है ना, वही इस किताब को इतना इतना जरूरी और अलग बनाती है। वो उन डॉट्स को कनेक्ट करती हैं जो शायद बाकी लोग ना देख पाए।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर, द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। आखिर ये है किस बारे में?
देखिए, ये किताब एक बिल्कुल नई किस्म के पूंजीवाद के जन्म और उसके बहुत तेजी से फैलने की कहानी है। जुबॉफ इसे ही निगरानी पूंजीवाद कहती हैं, और वह जोर देकर कहती हैं कि ये कोई टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है।
एक रणनीति, और इस रणनीति का बेसिस क्या है, मतलब ये चलती कैसे है?
इसका बेसिस है हमारा इंसानी अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस। उसको ये सिस्टम एक मुफ्त के कच्चे माल की तरह देखता है और इस्तेमाल करता है। हमारी जिंदगी, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज, हमारी बातें, हमारी भावनाएं, इन सबको डेटा में बदला जा रहा है, और ये सब अक्सर हमारी जानकारी या कह लीजिए हमारी असली सहमति के बिना होता है।
मतलब जो हम ऑनलाइन करते हैं वो सब रॉ मटेरियल बन जाता है।
हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये डेटा सिर्फ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, असल में इसे प्रोसेस करके हमारे भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणियां बनाई जा रही हैं, प्रिडिक्शंस।
भविष्यवाणियां हमारे बारे में?
हाँ, आपके, मेरे, हम सबके बारे में। और इन भविष्यवाणियों को फिर एक नए तरह के बाजार में बेचा जाता है, एडवर्टाइजर्स को या किसी भी ऐसी कंपनी को जो हमारे व्यवहार को जानना चाहती है या उसे प्रभावित करना चाहती है।
ओह,
जुबॉफ का तर्क है कि ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमारी अपनी मर्जी से फैसले लेने की क्षमता और यहाँ तक कि लोकतंत्र की नींव को ही मतलब खोखला कर रही है। ये किताब उस अनदेखी शक्ति का पर्दाफाश करती है जो चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रही है।
ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, किताब के कुछ मुख्य हिस्सों और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जुबॉफ एक बहुत जरूरी शब्द इस्तेमाल करती हैं, व्यवहारिक अधिशेष, बिहेवियरल सरप्लस। ये क्या चीज है?
हाँ, ये बिल्कुल बुनियाद है निगरानी पूंजीवाद की। देखिए, जब हम कोई ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ डेटा तो बनाते ही हैं जो सर्विस को चलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपकी लोकेशन तो चाहिए ही रास्ता बताने के लिए।
हाँ, जाहिर है।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है। आप कहाँ रुके, कितनी देर रुके, किस रास्ते से गए, आपकी स्पीड क्या थी, वगैरह वगैरह। ये जो अतिरिक्त डेटा है जो सर्विस देने के लिए टेक्निकली ज़रूरी नहीं है, वही है व्यवहारिक अधिशेष।
अच्छा, मतलब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल कंपनी अपनी सर्विस सुधारने के अलावा किसी और चीज़ के लिए कर सकती है।
बिल्कुल सही। और ज़ुबोफ बताती हैं कि गूगल ने 2000 के दशक की शुरुआत में, वो .com क्रैश के बाद, ये खोजा कि इस एक्स्ट्रा डेटा का एनालिसिस करके लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किन लिंक्स पर क्लिक कर रहे हैं, इससे एडवर्टाइजर्स को बहुत सटीक भविष्यवाणियां बेची जा सकती हैं। और यहीं से ये डेटा निकालो और भविष्यवाणी करो वाला मॉडल शुरू हुआ, और ये बहुत बहुत ज्यादा मुनाफे वाला साबित हुआ।
और जाहिर है ये सिर्फ गूगल तक तो सीमित नहीं रहा होगा।
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ुबोफ बताती हैं कि ये मॉडल बिजली की तेजी से फैला। फेसबुक, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और न जाने कितनी कंपनियां सब इसी रास्ते पर चल पड़ी। हर किसी ने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से डेटा निकालने के नए नए और ज्यादा चालाक तरीके इजाद किए। लक्ष्य एक ही था, ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक अधिशेष निचोड़ना और उससे पैसे कमाना।
यहाँ ज़ुबोफ की एक लाइन याद आती है जो बहुत कुछ कहती है। हमें लगा कि हम गूगल खोज रहे हैं, लेकिन गूगल हमें खोज रहा था।
वाह, ये तो पूरी कहानी बदल देता है। हम ग्राहक से उत्पाद बन गए।
बिल्कुल।
और ये जो भविष्यवाणियां बनती हैं, इनका क्या होता है, ये कहाँ जाती हैं, इसका भी कोई मार्केट है?
हाँ बिल्कुल है। और ज़ुबोफ उसे कहती हैं व्यवहारिक वायदा बाजार, बिहेवियरल फ्यूचर्स मार्केट्स। यहाँ पर कंपनियां हमारी इन भविष्यवाणियों का व्यापार करती हैं कि हम आगे क्या खरीदेंगे, किस वीडियो पर क्लिक करेंगे, अगले वीकेंड कहाँ घूमने जा सकते हैं।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ अजीब है, लेकिन ये एक सच्चाई है। ये एक फलता फूलता अरबों खरबों का बाजार है।
लेकिन ये डेटा हमसे लिया कैसे जाता है, हमें तो अक्सर पता भी नहीं चलता। वो लंबी चौड़ी प्राइवेसी पॉलिसी कौन पढ़ता है पूरी?
हाँ सही सवाल है। ज़ुबोफ इसी पूरी प्रक्रिया को अधिकार हरण चक्र कहती हैं, डिस्पोजेशन साइकिल। ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। पहले वो किसी नई जगह निगरानी शुरू करते हैं जहां पहले नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ जाती है, फिर कंपनियां तरीके बदलती रहती हैं, और अंत में उस सर्विस का असली मकसद ही डेटा इकट्ठा करना बन जाता है।
और वो प्राइवेसी पॉलिसी?
ज़ुबोफ कहती हैं कि वो असल में सहमति का दस्तावेज कम और हमारी मजबूरी का फायदा उठाने का जरिया ज्यादा है। देखिए, अगर आपको वो सर्विस चाहिए तो आपको अग्री बटन दबाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ज्यादातर।
ये तो हुई डेटा इकट्ठा करने और भविष्यवाणी करने की बात। लेकिन ज़ुबोफ कहती हैं कि कहानी यही खत्म नहीं होती। सिस्टम अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, वो हमारे व्यवहार को बदलना चाहता है। ये क्या बात हुई?
हाँ, और यहीं पर ये चीज सबसे ज्यादा मतलब चिंताजनक हो जाती है। जरा सोचिए, भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
क्या है?
ये पक्का करना कि लोग वही करें जिसकी भविष्यवाणी की गई है ना?
ओह हाँ, सही बात है।
तो निगरानी पूंजीवाद का अगला लॉजिकल कदम यही है, व्यवहार को नियंत्रित करना, उसे ट्यून करना, ताकि मुनाफा पक्का हो सके। इसे ज़ुबोफ क्रिया की अर्थव्यवस्थाएं कहती हैं, इकोनॉमीज ऑफ एक्शन।
इसका कोई उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो, थोड़ा कॉन्क्रीट?
पोकेमॉन गो गेम का उदाहरण जबरदस्त है। जो ज़ुबोफ देती हैं, वो बताती हैं कि ये सिर्फ एक मजेदार गेम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि क्या डिजिटल दुनिया के जरिए लोगों को असल दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, खास जगहों पर भेजा जा सकता है, जैसे स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड्स जिन्होंने गेम कंपनी को पैसा दिया था।
अच्छा,
और क्या हुआ?
और ये सफल रहा, लाखों लोग उन जगहों पर गए जहां गेम उन्हें ले गया।
तो ये दिखाता है कि निगरानी अब सिर्फ हमें देख नहीं रही, वो सक्रिय रूप से हमारे कामों में दखल दे रही है, हमें पुश कर रही है।
यानी भविष्यवाणी से नियंत्रण तक का सफर,
कंट्रोल।
और ये एक बिल्कुल नई तरह की शक्ति को जन्म देता है ना, जिसके बारे में ज़ुबोफ बात करती हैं, उपकरणवादी शक्ति,
इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर।
ये क्या है?
हाँ, ये निगरानी पूंजीपतियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति का एक बहुत ही अनोखा रूप है। ज़ुबोफ इसे 20वीं सदी की तानाशाही, जैसे ऑरवेल के बिग ब्रदर से अलग बताती हैं।
कैसे अलग है?
देखिए, पुरानी तानाशाही डर और हिंसा का इस्तेमाल करती थी, लोगों की आत्मा को कुचलना चाहती थी, उनके विचारों को बदलना चाहती थी। उपकरणवादी शक्ति, जिसे ज़ूबोफ मजाक में बिग अदर कहती हैं, उसको हमारे विचारों या आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता हम क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं।
तो फिर उसे किससे मतलब है?
उसे सिर्फ हमारे व्यवहार से मतलब है। हम क्या करते हैं, क्या क्लिक करते हैं, कहाँ जाते हैं, बस। और ये डर से नहीं, बल्कि व्यवहार बदलने के बहुत ही सूक्ष्म बारीक तरीकों से काम करती है। जैसे ऐप्स में छोटे छोटे संकेत देना, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करवाना, गेम्स जैसे तत्व डालकर हमें किसी खास दिशा में धकेलना, जिसे नजिंग भी कहते हैं आजकल।
अच्छा, वो छोटे छोटे पुश।
हाँ, लक्ष्य है हमें धीरे धीरे अनजाने में उन व्यवहारों की तरफ मोड़ना जो कंपनियों के क्लाइंट्स के लिए फायदेमंद हो। और ये सब पर्दे के पीछे से होता है,
हमें पता भी नहीं चलता
अक्सर। नहीं, ये शक्ति डिजिटल माध्यमों से दूर से काम करती है, इसीलिए ज़ूबोफ इसे निजी कंपनियों द्वारा किया गया ऊपर से तख्तापलट कहती हैं। एक ऐसा तख्तापलट जो हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता पर चुपचाप कब्जा कर रहा है। ये राज्य की शक्ति नहीं, ये बाजार की शक्ति है।
तो इस पूरी व्यवस्था के, इस नई शक्ति के नतीजे क्या निकल रहे हैं? समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है?
असर बहुत गहरे और सच कहूं तो डराने वाले हैं। सबसे पहले तो ये ज्ञान और शक्ति का एक जबरदस्त असंतुलन पैदा करता है, मतलब इम्बैलेंस। सोचिए, कंपनियां हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं या जानने की कोशिश कर रही हैं, जबकि हम उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र तो नागरिकों की जानकारी, उनकी समझ और उनकी स्वतंत्र सोच पर टिका होता है।
और व्यक्तिगत स्तर पर हमारी अपनी आज़ादी, हमारी फैसले लेने की क्षमता, उसका क्या?
वो भी कमज़ोर होती है। लगातार निगरानी और ये जो व्यवहार बदलने की कोशिशें हैं, ये हमारी अपनी मर्जी से सोचने और फैसले लेने की क्षमता को कम करती हैं। हम बाहरी संकेतों पर, एल्गोरिदम्स पर ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं। ज़ूबोफ का तो ये भी तर्क है कि ये हमारी नैतिक तर्क क्षमता, मतलब सही गलत सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है।
और बच्चों और युवाओं पर क्या असर होता होगा इसका?
उनके लिए ये और भी चिंताजनक है, क्योंकि उनका तो व्यक्तित्व भी बन रहा होता है। ये उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, के विकास में बाधा डाल सकता है।
ये सब सुनकर तो लगता है कि स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। क्या ज़ूबोफ कोई समाधान भी बताती हैं? कोई रास्ता है इससे निकलने का? हम क्या कर सकते हैं?
हाँ, वो समाधान की बात करती हैं, लेकिन वो साथ में ये चेतावनी भी देती हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास, जैसे हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स बदल लें या कुकीज डिलीट कर दें, ये काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि ये समस्या सिस्टमैटिक है, पूरी व्यवस्था की है। तो समाधान भी व्यवस्थागत, मतलब सिस्टमैटिक ही होना चाहिए।
मतलब बड़े बदलावों की ज़रूरत है पॉलिसी लेवल पर।
बिल्कुल, ज़ूबोफ कहती हैं कि हमें समाज के तौर पर ये तय करना होगा कि इंसानी अनुभव का कौन सा हिस्सा बाजार की चीज़ नहीं है, उसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। हमें नए कानूनों की ज़रूरत है, ऐसे कानून जो व्यवहारिक अधिशेष के इस तरह के अंधाधुंध संग्रह पर रोक लगाएं और जो व्यवहारिक वायदा बाजारों को गैर कानूनी घोषित करें। ये एक राजनीतिक लड़ाई है, सिर्फ तकनीकी नहीं।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज उभर कर सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे अहम, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये एक नई आर्थिक व्यवस्था है। निगरानी पूंजीवाद एक सोचा समझा मॉडल है, कोई एक्सीडेंट नहीं।
हाँ, दूसरी बात, व्यवहारिक अधिशेष इस पूरी व्यवस्था का ईंधन है, उसका कच्चा माल। जैसे पुराने औद्योगिक पूंजीवाद को प्रकृति और इंसानी मेहनत की जरूरत थी, इस नए पूंजीवाद को हमारे डेटा ट्रेल्स की जरूरत है।
तीसरा, ये सिस्टम सिर्फ हमें जानने पर नहीं रुकता, ये हमें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। भविष्यवाणी से नियंत्रण तक का सफर इसके डिजाइन में ही शामिल है।
बिल्कुल। और चौथी बात, उपकरणवादी शक्ति, ये एक नया अनदेखा खतरा है। ये बहुत सूक्ष्म तरीकों से हमारे व्यवहार को दूसरों के मुनाफे के लिए ढालती है, अक्सर हमारी जानकारी के बिना। हम भारत में भी इसके असर देख सकते हैं ना, जैसे शॉपिंग ऐप्स कैसे हमारी पसंद का अंदाज़ा लगाते हैं, या स्ट्रीमिंग सेवाएं हमें लगातार चीज़ें सुझाती हैं, या सोशल मीडिया फीड कैसे हमें खास तरह के कंटेंट में उलझाए रखती है। ये सब उसी बड़ी मशीन के छोटे पुर्जे हो सकते हैं।
आठवीं और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये सब हमारी व्यक्तिगत स्वायत्ता, हमारी फ्री विल और हमारे लोकतंत्र पर हमला है। जब हमारी स्वतंत्र इच्छा ही बाहरी ताकतों से प्रभावित होने लगे तो एक आजाद समाज की नींव कैसे मजबूत रह सकती है।
सही कहा। और इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे एक जगह ज़ुबोफ लिखती हैं, अब केवल हमारे बारे में सूचना प्रवाह को स्वचालित करना पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य अब हमें स्वचालित करना है, मतलब हमें कंट्रोल करना है। ये सीधे सीधे उनकी मंशा को उजागर करता है।
हाँ, और एक और जो मुझे बहुत पावरफुल लगी वो मुफ्त सेवाओं के बारे में है। निगरानी पूंजीवाद के उत्पाद और सेवाएं मूल्य विनिमय की वस्तुएं नहीं हैं, वे हुक हैं जो उपयोगकर्ताओं को उनके निष्कर्षण कार्यों में लुभाते हैं। मतलब फ्री सर्विसेज असल में चारा हैं, हमें फंसाने का जरिया, ताकि हमारा डेटा निकाला जा सके।
बिल्कुल, हुक।
तो सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं, इन बड़ी ताकतों के सामने हम कहां खड़े हैं?
देखिए, ज़ुबोफ व्यक्तिगत जागरूकता को पहला और बहुत जरूरी कदम मानती है। हमें इन मुफ्त सेवाओं पर सवाल उठाना सीखना होगा, ये सोचना होगा कि भाई अगर हम पैसे नहीं दे रहे तो आखिर कीमत क्या चुका रहे हैं। अपनी डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी, मतलब ये समझना कि हम ऐप्स को क्या क्या परमिशन दे रहे हैं, हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स क्या हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि हम किस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं।
और शायद थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है।
हाँ, ज़ुबोफ उसे अभयारण्य बनाना कहती हैं, सैंक्चुरी। अपनी जिंदगी में ऐसे पल या ऐसी जगहें बनाना जहाँ हम इस लगातार की निगरानी से मुक्त हों। कभी कभी फोन को दूर रखना, ऑफलाइन हॉबीज में वक्त बिताना, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करना, ये छोटे छोटे कदम हमारी मानसिक शांति और शायद थोड़ी स्वायत्तता बचाने के लिए जरूरी हो सकते हैं।
लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास काफी नहीं है, हमें सामूहिक और राजनीतिक स्तर पर भी कुछ करना होगा।
हाँ बिल्कुल, ज़ुबोफ ने हमें इस समस्या पर बात करने के लिए एक भाषा दी है। निगरानी पूंजीवाद, व्यवहारिक अधिशेष, उपकरणात्मक शक्ति, इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। और हमें सार्थक नियमों के लिए, मतलब असरदार कानूनों के लिए आवाज़ उठानी होगी। ऐसे कानून जो सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन तक ही सीमित ना हो, बल्कि इस पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवाल उठाएं और उस पर लगाम कसें।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि ये जो डिजिटल दुनिया है, ये उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। इसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक लॉजिक काम कर रहा है जो इंसानी अनुबल को ही मुनाफे का जरिया बना रहा है। हम सिर्फ यूजर नहीं है, हम शायद कच्चे माल का स्रोत बन गए हैं।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ये जो निजता की लड़ाई है, ये असल में इंसानी आज़ादी और गरिमा के एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। जब कोई बाहरी ताकत हमारे व्यवहार को इतने सूक्ष्म तरीकों से नियंत्रित करने की क्षमता रखती है, तो हम अपनी पहचान के, अपनी मर्जी के मालिक कैसे रह सकते हैं? ये हमारे होने की स्वतंत्रता पर, हमारे वजूद पर ही सवाल है।
व्यक्तिगत जागरूकता जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इन ताकतों को चुनौती देंगे और ऐसे नियम कानून बनवाएंगे जो इंसानी स्वायत्तता को बाजार के मुनाफे से ऊपर रखें।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार शायद ये हो सकता है, हम ऐसे भविष्य से कैसे बच सकते हैं जहां हमारे हर कदम, हर पसंद को किसी और के मुनाफे के लिए लगातार ट्यून किया जा रहा हो। क्या अपनी डिजिटल जिंदगी में सचेत होकर जानबूझकर कुछ अभयारण्य बनाना मुमकिन है? अगर हाँ, तो वो आपकी जिंदगी में कैसा दिखेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।